તારીખ 29/12/1996 શ્રી સમયસર કલષ્ટિકા શ્લોક નંબર 1 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બાંધણીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 17
પંડિત વર્ષથી આજનો જીકર શ્રી સમયસર કલષ્ટિકા શ્રીમદ અમૃતચંદ્રાચાર્ય વિરચિત છે. જીવ અધિકારનો પ્રથમ માંગલિક કળશ છે. પહેલો શ્લોક છે. મંગળ અર્થે, શાસ્ત્રના મંગળ અર્થે, મંગલાચરણ અર્થે આ શ્લોકની રચના નમસ્તમય સારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસતે ચિત સ્વભાવાય ભાવાય સર્વભાવાંતર છીએ. ખંડાન્વય સહિત અર્થ, એક એક શબ્દ ખંડ એટલે છૂટો પાડીને અર્થ અને ભાવાર્થ એટલે ટીકા પણ કરશે, અર્થ પણ કરશે અને શબ્દાર્થ ઉપર એની ટીકા પણ કરશે. શ્લોક છે એ અમૃતચંદ્રાચાર્યનો છે અને ટીકા છે એ રાજમલજી કૃત છે. મૂળ ટીકા ઢુંઢારી ભાષામાં લખાયેલી છે, ત્યાર પછી એનો હિન્દી અનુવાદ થયો છે, ત્યાર પછી હિન્દી ઉપરથી ગુજરાતી અનુવાદ થયો છે.
હિન્દી મેં બોલ્યો.
હા ઠીક હૈ. ક્યા કહા કે યે જો સમયસાર કુંદકુંદાચાર્ય દેવ કી રચના હૈ ઉસ પર ટીકા દો આચાર્યોને કી હૈ. એક શ્રીમદ અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ હૈ ઓર એક જયસેન આચાર્ય દેવ હૈ. અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ કી જો ટીકા હૈ વો ગદ્ય પદ્યાત્મક હૈ. પદ્યાત્મક મેને કાવ્ય મેં શ્લોક મેં ભી હૈ ઓર વચનો મેં ભી હૈ, કથનો મેં ભી હૈ. જો શ્લોક હૈ ઉસકો કલશ બોલતે હૈ. યહાં જૈસે કોઈ મંદિર પર કલશ ઇસકી શોભા દેતી હૈ, એસે આચાર્યશ્રી જબ બહુત રસ મેં આતે હૈ તબ વો પદ મેં રચના કર, વો ઉસકા જો વચન હૈ વો પદ્યાત્મક કાવ્યાત્મક હો જાતા હૈ. તો પ્રથમ હિ શાસ્ત્ર કે મંગલાચરણ મેં એક શ્લોક જો પહેલા કલશ બનાયા હૈ ઉસકી ટીકા જો રાજમલજી ને કી હૈ ઢુંઢારી ભાષા મેં ઉસકા ગુજરાતી અનુવાદ હૈ. ઉસકા સ્વાધ્યાય પણ પહેલે મંગલાચરણ કે કલશ પર કરેંગે. ભાવાય નમઃ, એક એક શબ્દ કા ખંડ મેને અલગ અલગ કરકે ઉસકા અર્થ ઓર ટીકા લિખતે હૈ. ભાવાય નમઃ, ભાવાય અર્થાત પદાર્થ. યહાં ભાવ શબ્દ કા અર્થ ભાવ નહીં હૈ, યહાં ભાવ શબ્દ કા અર્થ ભાવ કા ધારક ભાવવાન હૈ જો પદાર્થ હૈ. એક શબ્દ કે અનેક અર્થ હોતે હૈ, એક અર્થ કે એક શબ્દ કે અનેક અર્થ હોતે હૈ. તો ભાવ શબ્દ કા અર્થ ભાવ ભી હોતા હૈ, વહાં પર્યાય હોતી હૈ. ભાવ શબ્દ કા અર્થ સ્વભાવ ભી હોતા હૈ, વહાં ગુણ હોતા હૈ. और भाव शब्द का अर्थ पदार्थ होता है, यमा द्रव्य होता है, शब्द एक है। प्रकरण अनुसार इसका द्रव्य गुण पर्याय तीनों अर्थ निकलते हैं और तीनों अर्थ में इसका प्रयोग शास्त्रकारों ने किया है। यहां भाव माने पदार्थ, पदार्थ संज्ञा है, यानी संज्ञा माने नाम, पदार्थ नाम ऐसा दिया है वो सत्व स्वरूप की, सत्व स्वरूप की संज्ञा है, सत्व स्वरूप का नाम है। सत्व मैंने क्या कि पदार्थ का कोई सत्व होता है, वही पदार्थ का स्वरूप है। सत्व मैंने क्या, पदार्थ है वो सत्ता को, मौजूदगी को, अस्तित्व को धारण करता है, और उस अस्तित्व में उनके अनेक गुणधर्म है, उसको कहते हैं सत्तापणा, सत्तापणा को कहते हैं सत्व। तो पदार्थ ऐसा नाम सत्व स्वरूप का है, उस पर से ऐसा अर्थ निकलता है, यानी ऐसा अर्थ सिद्ध होता है कि जो कोई शाश्वत वस्तु रूप, जो कोई शाश्वत वस्तु का रूप है उसको मेरा नमस्कार। शाश्वत वस्तु का जो शाश्वत रूप है उसको मैं नमस्कार करता हूँ, उसके प्रति मेरे भाव नमन करते हैं, उसके प्रति मेरे भाव झुकते हैं। आत्मा का जो शाश्वत स्वरूप है उस शाश्वत स्वरूप के प्रति मेरे भाव झुकते हैं। क्यों झुकते हैं वो बात कहेंगे, यहां से शुरुआत करते हैं, नमन से शुरुआत करते हैं। मांगलिक है ना, तो मांगलिक में नमस्कार किया है, किसको नमस्कार किया है, अपने आत्म स्वरूप को नमस्कार किया है, कोई दूसरे भगवान को नमस्कार नहीं किया। ले सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन यह जो ग्रंथ है वो अध्यात्म प्रधान ग्रंथ है, समयसार है, वो द्रव्यानुयोग का अध्यात्म प्रधान ग्रंथ है। चारों अनुयोग में जितने भी ग्रंथ है उसमें आगम प्रधानता भी हो सकती है और अध्यात्म प्रधानता भी हो सकती है। दो प्रकार की कथन पद्धति शैली कथन में चली है, तो ये अध्यात्म पद्धति का ग्रंथ है। तो जिस शाश्वत वस्तु रूप को नमस्कार किया, यह वस्तु रूप कैसा है कि चित स्वभाव आय, चित मैंने ज्ञान, ज्ञान अर्थात चेतना, वही है स्वभाव माने सर्वस्व जिसका, उसको मेरा नमस्कार। क्या कहा, जो शाश्वत वस्तु रूप है वो ज्ञान स्वभावी है, चैतन्य स्वभावी है, और चैतन्य स्वभावी इसका सर्वस्व है। ऐसा जो मेरा चैतन्य स्वभाव है उसके प्रति परिणाम मेरी पर्याय नमन करती है, झुक जाती है। मेरे चैतन्य स्वभाव का दर्शन करते ही दर्शन करने वाली अवस्था झुकती है, झुक 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 जाती है। सर्वस्व कहीने वजन देवा मागे छे, अपने नहीं कहता है। यह एक ऐसा ऐसी कोई माँ होती है, उसका कोई इकलौता बेटा होता है, उसके परिवार में और कोई नहीं है, मानो के पति की भी अभी मौजूदगी नहीं रही और वो कोई नहीं है, परिवार में और कोई इसके साथ नहीं है, पति मर गया है, तो क्या कहेगी? ये जो बेटा है वही मेरा सर्वस्व है, उसका पूरा वजन वहां जाता है, वो उसकी संभाल, उसमें सावधानी, उसकी दरकार, वो सब उसका ही चलेगा, उसका जो जीव है वहीं रहेगा, उसके रहेगा। बेटा बीमार पड़ेगा तो वो भगवान से प्रार्थना करेगी कि अरे प्रभु इसकी बीमारी तुम मुझे दे दो, मुझे इसका दुख नहीं लगेगा, मेरा बेटा बीमार है वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसका सर्वस्व है वो। ऐसे मेरा सर्वस्व, मेरा चैतन्य स्वभाव है, मेरा ज्ञान स्वभाव है, वही मेरा सर्वस्व है। ऐसा सर्वस्व रूप में अपना स्वरूप को देखते हुए देखने वाली अवस्था झुकती है, नमन करती है, उसको भाव नमस्कार करने में आता है, और उसका कथन को द्रव्य नमस्कार कहते हैं, इसका कथन को द्रव्य नमस्कार कहते हैं।
इस स्वभाव में सभी भूख को ले लेने का, या ज्ञान को लेना, या चेतन को लेना,
અત્યારે તો જ્ઞાન નથી, જ્ઞાનની પ્રધાનતાથી વાત કરે છે, પણ સ્વભાવ કહેને છે, જ્ઞાન સ્વભાવ કહેને છે, અનંત ગુણ ગર્ભિત સમજી લેના, સમજ લેના, ક્યોકે વસ્તુ કોઈ એક ગુણાત્મક નહીં હૈ, વસ્તુ કોઈ एक गुणात्मक नहीं, इसलिए नान वही है स्वभाव, मैंने सर्वस्व जिसका, नान के गुण नहीं लिया है, स्वभाव लिया है, उसको मेरा नमस्कार। यह विशेषण कहने पर दो समाधान होता है। अब राजमल जी टीका करते हैं कि विशेषण किया चित स्वभाव, चित स्वभाव कहते ही चित मैंने ज्ञानात्मक, ज्ञान स्वभाव, तो पदार्थ को ज्ञान स्वरूपी कहने में दो समाधान होते हैं। टीकाकार के ज्ञान में दो बात आती है, और वो भी समाधान रूप में आती है। एक तो भाव कहता पदार्थ, पहला समाधान कौन सा? नमः समय साराय चित स्वभावाय भावाय, संस्कृत में जो व्याकरण है वो समझने वाले को पता चलेगा कि जिसको नमस्कार करने में आता है उसको चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया जाता है भाषा में, नमः समय सार नहीं कहते समय साराय, नमः भाव नहीं कहते भावाय, नमः स्वभाव नहीं कहते स्वभावाय। ये चतुर्थ विभक्ति है संस्कृत भाषा में। गुरुदेवाय नमः, गुरु नमः ऐसे नहीं, गुरुदेवाय, समय साराय, भावाय, ये चतुर्थ विभक्ति में वो लगता है उस प्रकार का, पीछे आय 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 ऐसा लगता है। तो कहते हैं कि भाव कहता पदार्थ, भाव कहने पर पदार्थ कहते हैं, जिसको नमस्कार किया वो पदार्थ क्या किया। तो कि पदार्थ तो दो तरह के कहें, यह पदार्थ में कोई चेतन है कोई अचेतन है, जड़ है। विश्व में दो जाति के पदार्थ हैं। पदार्थ की अगर बात करें तो विश्व में तो दो जाति के पदार्थ हैं, चैतन्य स्वरूपी भी है और अचेतन माने जड़ भी है। उसमें चेतन पदार्थ नमस्कार करने योग्य है ऐसा अर्थ निकलता है, चित स्वभाव कहते हैं। भावाय में तो पदार्थ बात आ गया, तो पदार्थ तो दो तरीके का है, तो कहते हैं यहाँ चित स्वभाव आय भावाय, यहाँ चैतन्य पदार्थ को नमस्कार करते हैं, अचेतन पदार्थ के प्रति हम झुकते नहीं है। अध्यात्म कहते हैं आता है इसमें कि सारे संसार के प्राणी जड़ पदार्थ के प्रति झुकते हैं, झुकते हैं क्या नहीं, सारे संसार के प्राणी किसके प्रति झुकते हैं, जड़ पदार्थ के प्रति झुकते हैं। किसके पीछे दौड़ते हैं, जड़ पदार्थ के प्रति। और कितना दीन है, दुकानदार होगा, दुकान में जाता है तो उसको नमस्कार करता है, किधर जहाँ पैर रखते हैं वहाँ। उम्रो कैसे आपने हिंदी में क्या कहते होंगे,
थड़ी थड़ी
थड़ी थड़ी को नमस्कार करते हैं। क्यों इसको क्यों नमस्कार करते हैं, कि यहाँ से पैसा आता है। एकांत ऐसा नहीं है कि दुकान पैसा देती है, दुकान में से पैसा आता भी है और दुकान लगाने वाले को जाता भी है, दिवाला भी निकलता है तो पूंजी चली जाती है। लेकिन वहां तो आशावादी रहता है, वहां वो देखता नहीं है, क्योंकि तो किसी एक का होता है दिवाला, तो बाकी सबको मिलता है। संसारी प्राणी झुकते हैं जड़ परमाणु के प्रति, सुख के साधन सब जड़ है, पंचेंद्रिय के विषय वहां झुकते हैं, दीनहीन हो जाते हैं। पहले के जमाने में कलम और साई भरने का, रोशनी भरने का खड़िया, आपको खड़िया बोलते हैं, दवात। तो उसको भी वो लगावे, नाड़ा छड़ी लगावे, मानते कि नहीं मानते, कलम को दोनों वही 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 पूजन करते कि नहीं, वो परमाणु की पूजा करते हैं। और तोलाई करने का कांटा, उसको भी हार लगावे, नींबू लगावे, और घर में शादी हुए तो कुमार के वहां मिट्टी और चक्र उसको भी पूजा करे। सारे संसार के प्राणी भगवान के प्रति झुकते हैं। यहां मोक्ष पाने वाला जीव लिया है। कैसा लिया है? संसार का नाश करके मोक्ष पाने वाला किसके प्रति झुकता है? चैतन्य स्वभाव के प्रति, ज्ञान के प्रति झुकता है तो परमाणु चेतन के प्रति झुकता नहीं है। तो कहते हैं कि पदार्थ तो दो तरीके के हैं, उसमें कोई चेतन पदार्थ, उसमें चेतन पदार्थ एक ही नमस्कार करने योग्य है, अचेतन नहीं, ऐसा अर्थ निकलता है। एक समाधान तो यह है। दूसरा समाधान ऐसा है कि यद्यपि वस्तु का गुण वस्तु में गर्भित है, वस्तु कहते हैं उसमें इसका गुण आ गया, शक्कर कहते ही उसका मीठापन उसमें आ गया, सोना कहते ही उसकी चमक उसमें आ गई, ऐसे वस्तु में वस्तु के गुण गर्भित है। देखो विज्ञान की बात चलाते हैं, द्रव्यानियों का ग्रंथ है ना, तो पदार्थ का साइंस की बात करते हैं। वस्तु के गुण वस्तु में गर्भित है, यानी वस्तु और गुण एक ही सत्व है, एक ही सत्ता में है, दोनों की दो सत्ता नहीं है। वस्तु की सत्ता मैंने अस्तित्व मौजूदगी, और गुण का अस्तित्व अलग अलग नहीं है, शक्कर अलग और मीठापन अलग ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा आम रस है, आम रस का जो स्वाद है वो भी इसका गुण है, और आम रस का जो कलर है वो भी उसका गुण है, वर्ण गुण और रस गुण। अब हमको तो उसका स्वाद से मतलब है, वर्ण से मतलब नहीं है। दुकानदार को यही कहें कि भाई आप वर्ण वापस ले लीजिए, हमको अकेला स्वाद दे दीजिए, नहीं बनता। वस्तु के साथ वस्तु का गुण आएगा, वस्तु के साथ वस्तु का गुण आएगा। वस्तु और गुण एक ही सत्व है, तथापि भेद उत्पन्न करके कहने योग्य है, क्योंकि विशेषण को कहे बिना वस्तु का ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। वस्तु और वस्तु का गुण, ऐसा दो भेद हो गया ना, तो वो भेद भेद को उत्पन्न करके वस्तु को बताना पड़ता है, तभी वस्तु का यथार्थ ज्ञान होता है। वस्तु अभेद है, अभेद का ज्ञान बिना भेद नहीं होता। सूर्य के बीच में बादल आ गए, आकाश में सूर्य है, बीच में बादल आने से नीचे अंधेरा छा गया है। और जितना बादल विघटन होएगा, बादल का बादल जितने कम होंगे उतना प्रकाश नीचे आएगा। तो बादल के ऊपर सूर्य है, उसका ज्ञान कहाँ से हुआ? कि प्रकाश के किरण से हुआ। प्रकाश के किरण जो अंदर आए उसके माध्यम से सूर्य वहां है, उसका ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? तो किरण है वो सूर्य नहीं है, सूर्य वहां है, किरण इधर है, सूर्य तो बादल के ऊपर है और किरण बादल के नीचे आए, फिर भी सूर्य का ज्ञान करने में वही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। वैसे आत्मा जो चैतन्य पदार्थ है उसका ज्ञान करने में उसका जो विशेषता है, ज्ञान इसकी विशेषता है, चैतन्य इसकी विशेषता है, वहाँ से ही उसका ज्ञान हो सकता है। दूसरा ज्ञान उत्पन्न होने का कोई सिस्टम, कोई व्यवस्था, कोई इलाज, कोई चारा नहीं है। जैसे हमको आत्मा का ज्ञान करना आवश्यक है, आत्मज्ञान जिसको कहते हैं, कि जिस आत्मज्ञान होने से परिभ्रमण मिट जाता है, जन्म मरण मिट जाता है, तो कोई कितना भी बुद्धिमान हो, उसके गुण भेद को कहे बिना उसका ज्ञान हो जाए ऐसा नहीं बन सकता। आत्मा 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 कर ऐसा कहने से ज्ञान नहीं आत्मा, लेकिन ज्ञान स्वभावी आत्मा कहते ही आत्मा का ज्ञान होता है, दूसरा कोई इलाज उसमें नहीं है। पांचवें कलश में वो बात राजमन जी ने किया है, जीव वस्तु निर्विकल्प है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, निर्विकल्प यानी निर्भेद अभेद है, और ये ज्ञान गोचर है, जैसा निर्विकल्प है वो ज्ञान में निर्विकल्प आता है, अनुभव गोचर होता है। उसको कोई कहना चाहे तब ऐसा ही कहने में आता है कि जिसके गुण दर्शन ज्ञान चारित्र है वही जीव है, दर्शन ज्ञान चारित्र को गुण को धारण करने वाला जीव है। जो कोई बहुसाधिक हो, साधिक मैंने अधिक बुद्धिमान हो, कितना भी बुद्धिमान हो, तो भी ऐसा ही कहना पड़े, ऐसा ही कहना पड़े, उतना कहने का नाम व्यवहार है, ऐसा भेद से कहने का नाम व्यवहार है, क्योंकि निश्चय वस्तु अभेद है। इसलिए यहां कोई आशंका करेगा कि वस्तु निर्विकल्प है, उसमें विकल्प मानी भेद को उत्पन्न करना अयोग्य है, अभेद वस्तु में आप भेद कर डालते हो, अयोग्य है। वहां समाधान है कि वो व्यवहार है, वो हस्तावलंब है, इसके बिना चारा नहीं है। बिना भेद अभेद को समझ नहीं सकते और समझाया भी नहीं जाता। आत्मा को समझाना वो व्यवहार है, श्री गुरु आत्मा को समझाते हैं, तो वो समझना और समझाना वो व्यवहार हो गया। वो व्यवहार कथन में चलता है, समझाने का व्यवहार किससे चलता है, कथन से चलता है, और कथन भेद को उत्पन्न करके ज्ञान में भेद उत्पन्न कराता है, जो ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है। तो इसकी जो आत्मा की विशेषता है वो एक भेद है उसका, कोई कितना भी बुद्धिमान नहीं हो, भेद से कहने पर ही अभेद को समझ सकेगा, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ये एक वस्तु स्थिति की विचित्रता है। क्या है, के कहने वाले को समझाना है अभेद को, निर्विकल्प को, और भेद कहे बिना निर्विकल्प को वो समझा सकता नहीं और अगला समझ सकता नहीं। कैसी विचित्र वस्तु स्थिति है देखो। तथापि भेद उत्पन्न करके कहने योग्य है, विशेषण कहे बिना वस्तु का ज्ञान उत्पन्न होता, विशेषण से ही विशेषता धारण करने वाली वस्तु जो विशेष्य है उसका ज्ञान होता है। बिना विशेषण विशेष्य का ज्ञान कभी होता नहीं है, क्योंकि जो वस्तु है वो अपने अनेक गुण की विशेषता को धारण करती हुई रहती है। उस वस्तु को की पहचान करानी है, समझानी है, तो उसकी विशेषता को बताना पड़ेगा।
सामान्य तो बस यही कहते हो कि ये विशेषता नहीं रही थी, મારી પતિ થઈ રહ્યા છે, જાણવા વાળો એમાં જણાઈ રહ્યું છે કે હું એમ કરીને સામાન્યને પકડવાનું,
ग्रहण करना करने का है अभेद को, सामान्य को, लेकिन विशेष के द्वारा ग्रहण किया। अपनों को ग्रहण करना है, किसको अवलंबन किसका लेना है, अपने स्वरूप का। अपने का अवलंबन लेना है तो ऐसा ही आएगा, ज्ञान मात्र हूँ मचाएगा। इसके सिवा कोई इलाज नहीं है, भेद से ही अभेद का ग्रहण होता है। विशेषता बिना विशेष्य का पता चलता है, क्योंकि वस्तु निर्विकल्प है। ये विकृति होती है, संभवित है, क्योंकि दूसरा इलाज नहीं है, दूसरा कोई इलाज नहीं है। जैसे हमको पहले मजले को जाना है, सीढ़ी से जाया जाता है, किससे, सीढ़ी से, एक एक सीढ़ी पैर रखना पड़ता है, पैर रखना भी पड़ता है, उठाना भी पड़ता है। अगर हम पैर रखते नहीं सीढ़ी पे ऊपर जा सकते नहीं, और रख करके खड़े रह जाते हैं, रखते ही है तो भी ऊपर जा सकते नहीं। रखना भी जरूरी है, भी जरूरी है, क्यों, हमारे यहां भी शास्त्र में बहुत छानबीन हुई है इस बात के, ये कार्य पद्धति के विषय में बहुत छानबीन हुई है, वहां बहुत तर्क उठाया गया है छानबीन करने के लिए कि एक तो हम लोग भेद में खड़े हैं, अभेद को कभी ग्रहण नहीं किया, और आप हमको भेद के भेद से समझाते हैं तो हमारा भेद दृढ़ हो जाता है और हम भेद में पहुंच नहीं पाते। तो ये ऐसा ऐसी गलती हुए, ऐसा नुकसान हुए, ऐसा करना ही क्यों, देखो भाई ऊपर जाना है ना, सीढ़ी पे पैर रखवाया, आपने सीढ़ी पे पैर रखवाया, अब कहते हैं उठा लो, तो रखवाया क्यों, जब पैर रखवाया तो उठाने की बात क्यों करते हो, मत रखो, रखवा रखवाओ नहीं, यानी रखवाएंगे भी और उठवाएंगे। ऐसे व्यवहार को स्थापित भी किया है और उसकी उत्थापना भी की है। क्या सीधा व्यवहार को उत्थापित नहीं किया है, स्थापित करके उत्थापित किया है व्यवहार। क्यों, एक सीढ़ी है, अस्तावलंबन किया ना वहां पांचवा कलश, वो अस्तावलंबन एक सीढ़ी है, पैर रखना है और उठाना भी है। तो भेद रूप व्यवहार है, यहां से ही अभेद में जाया जाता है। विशेषण को कहे बिना विशेष रूप वस्तु का ज्ञान उत्पन्न होता नहीं। पुनः कैसा है भाव, भाव मैंने पदार्थ, कैसे कैसा है भाव, इस समय सारा यो भाव है, वो समय सार रूप है। दूसरा विशेषण क्या कहा, कहा यद्यपि समय शब्द के बहुत अर्थ है, प्रचलित अर्थ तो समय, वक्त को समय कहते हैं, टाइम पीरियड उसको समय कहते हैं, ऐसे बहुत अर्थ है समय शब्द के, बहुत अर्थ है, तो भी यहां पर इस प्रकरण में समय शब्द से सामान्य रूप से जीवादि सगल पदार्थ जानने, समय मैंने पदार्थ, पदार्थ में सभी पदार्थ ले लेना, छोड़ द्रव्य ले लेना, समय कहने पर सभी पदार्थ आ जाते हैं। उसमें जो कोई सार है, जगत के सभी पदार्थ में कोई सार है, सार कहने पर उपादेय है वो जीव वस्तु, उसको मेरा नमस्कार। सभी पदार्थ को नमस्कार नहीं, सभी पदार्थ में जो सारभूत है उसको मैं नमस्कार करता हूं। वो सार कौन है, जीव, जीव ही एक सार है। सभी पदार्थों में एक जीव पदार्थ ही सारभूत है। सार माने क्या, वो कहेंगे सार माने क्या कहना चाहते हैं, कि सार कहने पर उपादेय ग्रहण करने योग्य, उपासना करने योग्य, उसको मेरा नमस्कार। इस विशेषण का भावार्थ ऐसा है कि सार पदार्थ जान करके चेतन पदार्थ को नमस्कार प्रमाण रखे, प्रमाण मैंने मान्य रखे, चेतन पदार्थ को जीव को नमस्कार करना ऐसा मान्य रखा, स्वीकार किया गया, मान रखा मैंने स्वीकार किया, और असारपना देख करके जान करके अचेतन पदार्थ का नमस्कार को निषेध किया। क्या निकाला देखो, कि तुम अनादि से अचेतन पदार्थ के प्रति झुकता है उसको हम निषेध करते हैं, वो तो तुम छोड़ दो, अचेतन पदार्थ के प्रति तुम्हारा जीव झुकना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, कि ऐसा झुकने से तुमको आकुलता और दुख मिलते मिलता है, इसलिए तो प्रयोजन तो सुख का है, प्रयोजन तो सुख का है, इसलिए वो बात निकाल रहे हैं। सार पदार्थ जान करके चेतन पदार्थ को नमस्कार मान्य रखा, असारपना जान करके अचेतन पदार्थ का नमस्कार, पदार्थ के नमस्कार को निषेध किया। अब कोई वितर्क करता है, प्रश्न उठाता है, ऐसा कहने वाले के प्रति प्रश्न उठाता है कि सभी पदार्थ अपने अपने गुण पर्याय से विराजमान है, स्वाधीन है, कोई किसी के अधीन तो है ही नहीं। जैसे जीव में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण हैं, तो परमाणु में भी रूप रस गंध वर्ण शब्द आदि अनंत गुण है, अपनी अपनी शक्ति से सभी पदार्थ विराजमान है, वो भी अनंत शक्तिवान है, परमाणु भी अनंत शक्तिवान है, जीव भी अनंत शक्तिवान है, कोई छोटा कोई मोटा ऐसे क्यों बात करते हो? सब स्वतंत्र है, सब अपने अपने शक्ति से स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन तो नहीं है, इसलिए कोई बड़ा है कोई छोटा है वो बात नहीं रहती। तो फिर जीव पदार्थ को सारपणा कैसे घटित होता है, अब इसको सार क्यों लगाया, जीव को ही सार क्यों लगाया, मैंने जीव को क्यों उपाधि करते हो, उसका समाधान के लिए दो विशेषण कहते हैं, उसके समाधान के लिए दो विशेषण कहते हैं और कहते हैं कि कैसा है भाव, भाव मैंने पदार्थ कि स्वानुभूत्या चकासते सर्वभावांतर छिदे, ऐसे दो बात किया। स्वानुभूत्या मैंने इस अवसर पर, मैंने यहाँ जो प्रकरण चलता है वह स्वानुभूति, स्वानुभूति कहने पर निराकुलत्व लक्षण शुद्धात्म परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख जानना, क्यों जीव को उपाधि करता है, एक तो उसमें अतीन्द्रिय सुख है, ये विशेषणता है कि जिसमें आकुलता बिल्कुल निराकुल निर्विकल, और दूसरा लोकालोक को जानने की शक्ति सर्वभावांतर से, तो ज्ञान भी है और सुख भी है, ऐसे दो विशेषण और कहे, क्योंकि वो उपाधि है, क्यों उपाधि है, ऐसे दो विशेषण है इसलिए उपाधि है, ऐसे ही उपाधि नहीं करते, उपाधि होने का भी कारण है, उपासना करने का भी कारण है कि जीव में ज्ञान भी है और सुख भी है, और अजीव में अचेतन में ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं है, इसलिए उसकी उपासना नहीं करनी चाहिए।
ज्ञान की शुरुआत करी सुख में ले जाए,
प्रयोजन सुख नु छे, ज्ञान नु नथी, एटले पण बे विशेष गुण छे, બે વિશેષ ગુણ છે, અને કોઈ ઓછામાં ઓછા ઉઘાડવાળા સ્વાનુભૂતિમાં આવે છે તિર્યંચ જીવો, જે તિર્યંચ જીવ છે, પશુ પક્ષી, પશુ કે જીવ કો ભી સ્વાનુભૂતિ હોતી હૈ, ઉસકો જ્ઞાન બહોત કમ હૈ, फिर भी ये दो बात तो उनको भी समझने में आती है कि मुझे स्वसंवेदन हुआ, ज्ञान में क्या हुआ, स्वानुभूति मैंने स्वसंवेदन हुआ, अनुभव हुआ मेरा, ज्ञान का वेदन हुआ और उसमें सुख का आनंद का अनुभव भी मुझे आया, वो दो बात तो उनके समझ में भी आती है, बस उसमें दो में पूरा जीव आ गया, दो विशेषण का अनुभव से जीव का आत्मा का स्वरूप का अनुभव हुआ, ऐसा अनुभव होता है, इसलिए वो दो बात को मुख्य करके यहाँ उसके अर्थ को खोला है राजमल जी ने। यहाँ पर स्वानुभूति कहने पर निराकुलत्व लक्षण शुद्धात्म परिणमन रूप अतीन्द्रिय सुख जानना, उस रूप से अवस्था है जिसकी, और सर्वभाव कहने पर एक बात, और सर्वभाव कहने पर अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित अनंत गुण से विराजमान जितने जीव आदि, जीव अजीव सभी सर्व पदार्थ, उसकी अंतरछेदी मैंने एक समय में युगपत प्रत्यक्ष रूप से जाननशील जो कोई शुद्ध जीव वस्तु, उसको मेरा नमस्कार। मैंने लोकालोक को एक समय में जानने वाली कोई शक्ति है, वस्तु है, उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ, और जिसमें अतीन्द्रिय सुख भरा है उसको भी मैं नमस्कार करता हूँ। ज्ञान और सुख दोनों लिया है, ज्ञान और सुख में आपस में संबंध है, निमित्त निमित्त। कैसे कि स्वभाव तो ज्ञान स्वभाव है, जीव का स्वभाव क्या है, ज्ञान स्वभाव है, और सुख भी इसका स्वभाव तो है। तो जीव को ज्ञान तो होता है लेकिन सुख क्यों नहीं हो रहा है, ज्ञान स्वभावी चीज है, ज्ञान हो रहा है, सुख क्यों नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि स्वभाव को प्रतिबंध है इसलिए सुख नहीं हो रहा है। किस प्रकार का प्रतिबंध है कि स्वभाव तो अंतरछेदी सर्वभावांतरछेदी सबको जानने वाला है, और जानता है थोड़ा, कितना जानता है, अल्प जानता है, तो अल्प जानने वाले को पूरा सुख नहीं हो सकता, नहीं जानता है उसकी आकुलता रहेगी। स्वभाव का प्रतिबंध वही दुख का कारण है। इसलिए सर्वज्ञ परमात्मा को सुख भी पूरा है और ज्ञान भी पूरा है। ज्ञान अधूरा हो और सुख पूरा हो वो बनता नहीं है। अनंत सुख और अनंत ज्ञान 13वें गुण स्थान में एक साथ उत्पन्न होता है। कितनी लंबी चौड़ी बात कर दिया है। सर्वभाव मैंने अतीत अनागत वर्तमान पर्याय सहित अनंत गुण से विराजमान जितने भी पदार्थ, उसमें सर्वभाव ले लेना, उसको अंतरछेदी मैंने एक समय में युगपद मैंने एक साथ प्रत्यक्ष रूप से, कोई माध्यम कोई साधन नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जानने वाला जो कोई शुद्ध जीव वस्तु, उसको मेरा नमस्कार। अतीन्द्रिय सुख स्वभावी वस्तु को भी नमस्कार किया, और अतीन्द्रिय पूर्ण ज्ञान स्वरूप को वस्तु को भी नमस्कार किया। और विशेष बातें कहते हैं कि ऐसे शुद्ध जीव को सारपणा घटित होता है। शुद्ध जीव को सारपणा घटित होता है, तो ये व्याजीब है। शुद्ध जीव स्वरूप को समय सार कहना वो व्याजीब है। क्यों क्यों सार मैंने हितकारी और असार मैंने हितकारी। तो हितकारी क्या है कि यहां पर हितकारी सुख जानना और अहितकारी दुख जानना, क्योंकि अजीव पदार्थ जितने भी है, पुद्गल है, धर्म धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, आकाश है, काल है और दूसरे संसारी जीव है, क्या लिया? दूसरे संसारी जीव, उन सभी को सुख भी नहीं और ज्ञान भी नहीं। संसारी जीव ले लिया, साधक जीव नहीं लिए, सिद्ध जीव नहीं लिए, अपना जीव नहीं लिया, संसारी जीव ले लिया। क्योंकि उनको सुख नहीं है, दुख है। और जो पांच बाकी के जड़ पदार्थ है उनको ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं। और संसारी जीव को भी ज्ञान भी नहीं और सुख भी नहीं, संसारी जीव को। हाँ, दुखी है, ठीक है, दुखी तो, लेकिन ज्ञान तो है कि नहीं, कि तो कोई ज्ञान भी नहीं है। संसारी जीव को ज्ञान नहीं लिया, संसारी जीव को ज्ञान होता तो वो सुखी हो जाते हैं। अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, लेकिन अज्ञान है, अपना स्वरूप का अज्ञान है। अपना स्वरूप का ज्ञान कहाँ है उसको? खुद को ही नहीं जानते उसको ज्ञान क्या कहना? जो अपने को नहीं जाने ऐसे ज्ञान को ज्ञान क्या कहना? संसार में भी लोग में कहते हैं कि तुम अपना घर की तो कुछ जानते नहीं, और दुनिया भर की पंचायत करता है, ये कहाँ की बात है? पंचायत करने वाला होता है ना, इसके बच्चे भूखे मरते हैं क्या? नाथ का पटेल होते हैं हमारे यहाँ, पटेल मैंने क्या पंचायत करता है? इसका लड़का ऐसा है, उसके लड़के ऐसे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, क्यों? उसका वो धंधा हो गया है। पंचायत करने वाले का लड़के भूखे मरते हैं, क्यों? उसको तो मान सम्मान चाहिए। आइए आइए, आप हमारा कुछ कर दीजिए, आप सबको जानते हैं, आपको सब मालूम है, आप सब कुछ कर सकते हैं, दूसरे का करने को रह गया, अपना छूट गया। ऐसे में इसको जानो, उसको जानो, उसको जानो, लेकिन तेरे स्वरूप को तो जानता नहीं कि तुम खुद कैसा है। तुम खुद कैसा है वो तुमको मालूम नहीं, सब दुनिया भर की पंचायत करता है। तो तुम दुखी होता है, तुम्हारा पेट भरता नहीं, मैंने सुख नहीं होता तुमको, तुम दुखी होता है। हाँ, ये तेरा ज्ञान कैसा है कि तुम खुद को नहीं जाने? उसको ज्ञान और सुख नहीं, और उसके स्वरूप को जानने वाले जाननहार जीव को भी सुख भी नहीं और ज्ञान भी नहीं। जाओ, ये अध्यात्म निकाला है, अजीव को सुख और ज्ञान नहीं, सुख और ज्ञान नहीं तो उसको तो नहीं। लेकिन संसारी ऐसे हैं और अजीव ऐसे हैं, उतना ही मात्र जाने, उसको भी सुख नहीं होता और उसको भी ज्ञान होता उसको भी सुख नहीं और उसको भी ज्ञान नहीं। जा, क्या वजन दिया? कि तुम तेरे स्वरूप को जाने तो वो ज्ञान है और वहां सुख है, ये कहने का अभिप्राय है। तुम दूसरे को जाने उसमें सुख भी नहीं होगा और उसमें ज्ञान भी नहीं होगा। उड़ाया है पर की चिंतना को उड़ा दिया है, लेकिन जीव को पर की चिंतना गले लगी है। क्या है पर की चिंतना? गले लगी हो तो दुखी हो क्या? क्या भाई, इसलिए क्या राजवीर जी बहुत अध्यात्म प्रधान बात करते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो पांच पदार्थ और संसारी जीव का स्वरूप जानने वाले को भी सुख भी नहीं और ज्ञान भी नहीं, इसलिए उसको सारपना घटित होता नहीं। शुद्ध जीव को सुख है और ज्ञान भी है, शुद्ध जीव में सुख भी है, शुद्ध जीव में ज्ञान भी है, इसलिए शुद्ध जीव को जानने वाले को अनुभव करने वाले को सुख भी है और ज्ञान भी है।
बहुत सरल।
शुद्ध जीव में ज्ञान भी है और सुख भी है, इसलिए शुद्ध जीव के अनुभव करने वाले को ज्ञान है और सुख है, बाकी वाले को ज्ञान और सुख नहीं है, ऐसा हम तो जानते हैं। इसलिए शुद्ध जीव को सारपणा घटता है, इसलिए शुद्ध जीव को सारपणा बराबर लागू पड़ता है। इसलिए समयसार माने शुद्ध जीव, समयसार माने शुद्ध जीव, द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रही, जो जीव का शुद्ध स्वरूप है उसको समय सार कहने में आता है।
पर्याप्ति नहीं कम, पर्याप्ति नहीं
थी कार्य समझता नहीं आया। शुद्ध जीव इतने शुद्ध स्वरूप छे, एने जानवा वालों के तो त्या पर्यार्थिक नहीं आयो, शुद्ध जीव के तो मूल स्वरूप, एमा ज्ञान पण छे, એમાં સુખ પણ છે, પછી એને જે જાણવા વાળો લીધો એ પર્યાય છે, એને જાણનાર ને જ્ઞાન પણ છે, એને
પેલા દ્રષ્ટિનો વિષય થઈને પછી
મૂળ સ્વરૂપ બતાવવું છે, મૂળ સ્વરૂપ બતાવવાનો અભિપ્રાય છે, સમયસાર કરતા મૂળ સ્વરૂપ, જીવનું મૂળ સ્વરૂપ
સુખ નામ